शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ प्रेमपुरी आश्रम और दैया परिवार द्वारा संयुक्त आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालीन विशेष प्रवचन का आज सातवां दिवस है ना? आज सातवां दिवस है। इस प्रवचन के लिए निर्धारित विषय है आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित वाक्यवृत्ति। इस आधार पर वेदांत विचार चल रहा है। इस प्रकरण में शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है, कि भवबंधन से आसान से मुझे छुटकारा मिले, मैं मुक्त हूं, ऐसा कोई उपाय है तो मुझे बताइए। अनायासेन अनायासेन ये अस्मान मुच्चेयम भववंदनान् तन्मे संक्षिप्य भगवन् केवलं कृपया वद। ये जिज्ञासा का आधार है, विचार का आधार है। तो इससे सिद्ध हुआ कि यह ग्रंथ भवबंधन मोचक है। इस क्रम में गुरु ने उत्तर दिया था वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाला जीव और ब्रह्म की एकता ज्ञान ही तुम्हें भवबंधन से मुक्त करने में समर्थ है। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्तम यद् जीव परमात्मनोः तादात्म विषयम् ज्ञानम्। तो शिष्य ने पूछा कि महाराज, जीव क्या है ये मैं जानता नहीं, परमात्मा क्या है यही मैं नहीं जानता, तो दोनों की एकता कैसे होगी, इसको मैं कैसे जानू। क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान बहुत जरूरी है, तो पहले मुझे तम पद का अर्थ बताइए, फिर तत् पद का अर्थ बताइए, फिर असी पद का अर्थ बताइए, फिर इनके अर्थों में तादात्म्यता कैसे है, कैसे संभव है, कि युक्ति बताइए, तब जाकर ये तादात्म्य का बोध होगा और तभी जाकर मेरा भवबंधन से मुझे मुक्ति मिलेगी। शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में पहले तुम पद का शोधन शुरू कर रहे हैं गुरु। इस प्रसंग को पदार्थ शोधन कहा जाता है, तो पहले तुम पद का शोधन की प्रक्रिया गुरु बता रहे हैं। तुम पद को कैसे शोधन किया जाए, उसके लिए पहले तो तुम पिंड से शुरू करो। पिंड माने देह, वहां से पदार्थ शोधन करो, तुम पद का अर्थ शोधन करो। यथा घट दृष्टा घटाद भिन्न, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ఘటద్రష్ట, జైసే ఘటద్రష్ట ఘటసే సర్వథా భిన్న హోతా హై, ఉసీ ప్రకార సే దేహ ద్రష్ట దేహ సే సర్వథా భిన్న రహతా హై. ఈ బాత్ తుమ్ పక్కీ బాత్ పక్కీ కర్ లో. సాధారణతయా వేదాంత పర శ్రవణ మే జో కోయి ప్రవృత్త నహీ హువా హై, ఐసే వ్యక్తియోం కో జిస్కో అభావనా దోష సే గ్రసిత హై, జో అభావనా దోష సే గ్రసిత జో వ్యక్తి హై, ఐసే వ్యక్తి సంసార మే బహుత్ హై, वे लोग ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि शरीर से भिन्न मैं नामक कोई तत्व अलग है, ये कल्पना ही नहीं कर सकते. उनके लिए ये पहले कठिनाई तो होगी. ఘటద్రష్ట ఘటాద్ భిన్నం యథా తథా దేహద్రష్ట దేహాత్ భిన్నం. పహలే తో దిమాగ్ మే బుద్ధి మే యే ప్రసంగ ఇస్కా పిక్చర్ ఇస్కా స్వరూప హీ నహీ ఆయేగా, क्योंकि घड़े को तो आंखों से देखकर यह निश्चय किया जाता है कि वो मैं दृष्टा, ये दृश्य इससे मैं अलग हूं. और घड़ा फूटने पर भी मेरे से घड़े का कोई संबंध नहीं. घट के प्राग अभाव को भी मैं देखता था, घट के अन्यन्य अभाव को भी मैं देख रहा हूं, घट के प्रध्वंसाभाव को भी हम देख सकते हैं, देखेंगे. इसलिए घट से मैं अलग हूं, ये बात तो सभी को मनुष्य मात्र को समझ में आती है. लेकिन साधारण मनुष्य देह के प्राग अभाव को देखा ही नहीं. उसने तुमने अपने शरीर के प्राग अभाव को देखा है? बोलो है? अपने शरीर का, अपने देह का प्राग अभाव को तुमने देखा है? कैसे दिमाग में आवे देह दृष्टा? हां, अभी शरीर के अन्योन्याभाव को तो तुमने देखा है, देह के अन्योन्याभाव को तो तुमने देखा है ना. देह में कुर्सी का अभाव, कुर्सी में देह का अभाव, ये तो देखा है कि नहीं? बोलो. इसको कहते हैं अनन्य अभाव. शरीर में कुर्सी नहीं है, कुर्सी में शरीर नहीं है, शरीर कुर्सी नहीं, कुर्सी शरीर नहीं, इसको कहते हैं अनन्य अभाव. गाय में भैंस नहीं, भैंस में गाय नहीं, इसको बोलते हैं अनन्य अभाव. गाय में भैंस का अभाव, भैंस में गाय का अभाव, मनुष्य में पशु का अभाव, पशु में मनुष्य का अभाव है ना. भोजन में शरीर का अभाव, शरीर में भोजन का अभाव आदि आदि. ये सामान्य व्याख्या में सर्वसाधारण का अनुभव में जो आ रहा है, इस तरह से अन्यन्य भाव तो अभी अनुभव कर रहे हो, लेकिन आज तक किसी ने भी प्रध्वंसा भाव को देखा? कहने वाला खुद अपने देह के प्रध्वंसा भाव को मैंने देखा, कहने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं है, समझे कि नहीं? तो साधारण व्यक्ति के दिमाग में ये पिक्चर, ये दृश्य आना असंभव है कि घटद्रष्टा यथा घटद्रष्टा गतात भिन्न तथैव देह द्रष्टा देहात भिन्न। तो कैसे मानूं मैं, कहता है, तो फिर तो उसको कहना पड़ता कि मान के चल बस, और कुछ नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल दिखाया तो नहीं जा सकता है, सकता है नहीं? नहीं नहीं, जैसे घटद्रष्टा घटात भिन्न ये तो प्रैक्टिकल दिखाया जा सकता है, प्रयोगात्मक ढंग से दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है और समझ में भी आ जाएगा, एक गंवार से गंवार व्यक्ति को भी बस समझ में आ जाएगा। लेकिन देहद्रष्टा देहात भिन्न ये बात प्रयोगात्मक रूप में किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता, कोई देख भी नहीं सकता, यही कारण है कि सभी को समझ में नहीं आता, और कुछ नहीं है। तो हम बार बार ये कहते हैं कि तुम पहले मानकर तो चलो, अब भी पहले रिजल्ट सामने दिखाओ तब हम माने, कहते हो तो रिजल्ट सामने दिखाना तो संभव नहीं है। ये रिजल्ट सामने दिखाने के लिए तो प्रयोगात्मक करना पड़ेगा, प्रयोग करेंगे तभी रिजल्ट सामने आएगा। अब यह संभव नहीं है, तो कम से कम तुम मानकर चलोगे तो फायदा क्या होगा? बोले अभावना दोष की निवृत्ति हो जाएगी, समझे कि नहीं? एक दोष जो सबसे पहले विद्यमान है, अभावना दोष की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम मान रहे हो, उसको केंद्र मानकर अब आगे विचार करो। तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब अभावना दोष की निवृत्ति हो गई। अब तुम उसको मानोगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, और तुम ये आग्रह करने लग जाओ कि रिजल्ट दिखाओ तो मैं मानूं, तो ये संभव ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी अभावना दोष तो दूर होनी ही नहीं है। जब अवाना दोष ही दूर नहीं होगा तो असंभावना दोष कैसे निवृत्त हो? और जब असंभावना दोष निवृत्त न हो तो विपरीत भावना दोष निवृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं करो। तो त्रिविध दोष के चलते फिर तुम पद का शोधन हो ही नहीं पाएगा। त्रिविध दोष के चलते तुम पद का शोधन हो ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगी नहीं। तो मैं बार बार पहले ये कहता हूं तुम मानकर चलो, क्योंकि ये आप्तवाक्य है। तुम जो सुन रहे हो, हम जो सुना रहे हैं, तुम जो सुन रहे हो, ये आप्तवाक्य है, ये गुरु का वचन है, ये महापुरुषों का वचन है। इसलिए महापुरुष यदि कहते हैं तो वो गलत नहीं कहेंगे, आप तो पुरुष कहेगा तो गलत नहीं कहेगा। तब वहां विश्वास श्रद्धा इसका प्रयोग करके तुम मानकर चलो। तुलसीदास जी ने रामायण में मंगलाचरण में लिख दिया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हाँ, भवानी श्रद्धा रूपिणी है और शंकर विश्वास रूप है, हाँ? इसलिए श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर और पार्वती को मैं पहले वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। याभ्याम बिना न पश्यंती, इस श्रद्धा और विश्वास के बिना स्वांतस्थम सिद्धम स्वांतस्थम ईश्वरम अपि न पश्यंती। कितनी सुंदर क्लियर बात कह दी है तुलसीदास जी ने, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना स्वयं सिद्ध हुए हुए वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ता, स्वयं सिद्ध हुआ हुआ वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ता है। अंतस्थम ईश्वरम स्वयं सिद्धम, देख लो, ईश्वर स्वयं अंदर ही विद्यमान है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं भू है, फिर भी श्रद्धा और विश्वास के बिना उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को तो आगे रखना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि से, हमारे अग्रज गुरुओं की बुद्धि काफी तीव्र है, काफी पर्याप्त है, काफी सक्षम है, काफी सूक्ष्म है। इसलिए उन्होंने कहा है तो गलत नहीं कहा, उनकी बुद्धि, गुरुओं की बुद्धि, आप्त पुरुषों की बुद्धि तो दीर्घकालिक साधना से परिष्कृत हुई हुई है, और इसीलिए वो जो कह रहे हैं उस पर तो हमको विश्वास करना ही होगा। श्रद्धा विश्वास तो नहीं, मान लो, नहीं मानोगे तो तुमको पहले रिजल्ट दिखाओ तब हम मानेंगे, तो वो संभव ही नहीं होगा। तो मैं बार बार कहा करता हूं, गणित के सिद्धांत को पढ़ाने वाला टीचर, सपोज मान लो कि तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, विद्यार्थी को ये कहता है। अब विद्यार्थी कहे कि नहीं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम कहते हो 100 रुपया है। बोले बेटा मान लो कि तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, वो कहता है मेरे पास 100 रुपया है नहीं, एक भी रुपया नहीं है, पहले 100 रुपया दो तब मैं मानू कि मेरे पास 100 रुपया है। विद्यार्थी यदि इस प्रकार के हठ करने लग जाएगा तो मास्टर गणित पढ़ा पाएगा, पढ़ा पाएगा? बोलो, कितनी की जेब में 100 रुपया डालते जाएगा और गणित पढ़ाता जाएगा? वो अपने जेब में 100 रुपया डालने के लिए तुम्हें गणित पढ़ा रहा है, और तुम कह रहे हो कि नहीं पहले मेरे जेब में 100 रुपया लाओ तब मैं मानूंगा कि मेरे जेब में 100 रुपया है। तो ना तुम गणित पढ़ पाओगे, ना मास्टर गणित पढ़ा पाएगा, ना उसमें घटाऊ घटाने का फॉर्मूला समझ पाओगे गणित के, ना जोड़ के फॉर्मूला समझ पाओगे गणित के, ना माइनस का ना प्लस का है, ना भाग का ना गुणा का। अब हम भी जानते हैं कि 100 रुपया तुम्हारे पास नहीं है, यदि तुम मान लेते हो तो गणित के सारे फॉर्मूले तुम समझ सकते हो और रिजल्ट तुम्हारे सामने आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? गणित के फॉर्मूले को समझ सकते हो, और समझने मात्र नहीं, बाद में रिजल्ट तुम्हारे सामने आ सकता है प्रत्यक्ष। तुम कहो कि पहले 100 रुपया दिखाओ तब हम समझेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। इसी तरह प्रसंग क्या चल रहा है, तुम कहो यथा घट दृष्टा घटात भिन्न तथा देह दृष्टा देहात भिन्न, ये बात तुम प्रैक्टिकल दिखाओ, रिजल्ट के रूप में दिखाओ। तो कोई भी गुरु, महा से महान गुरु भी तुम्हें देह दृष्टा, देह से भिन्न करके तुम्हारे देह को प्रत्यक्ष दिखा देवे, संभव नहीं। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि हम पहले कह रहे हैं, जैसे व्यवहार में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात को, जैसे व्यवहार में घट का प्राग अभाव को हमने प्रत्यक्ष देखा है, तब हमको समझ में आता है कि घट दृष्टा मैं घट से भिन्न हूं, क्योंकि घट के प्राग अभाव को भी देखा है, घट के अन्यन्य अभाव को भी देखा है, घट के प्रध्वंस अभाव को भी देखा है। अब देह के प्राग अभाव को मैंने नहीं देखा, राजू तुमने देखा है? तुम्हारे देह के प्राग अभाव को देखा है? तो कैसे समझ में आएगा कि मैं देह से भिन्न हूं? और देह के प्रध्वंस भाव को तुमने देखा है? तुम्हारे देह के प्रध्वंस भाव को तुमने देखा है? तुम लोग समझ रहे हो प्रध्वंस भाव का मतलब क्या है? मृत्यु के पश्चात होने वाले अभाव को प्रध्वंस भाव कहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? है? हाँ, बाप के देह के प्रध्वंस भाव को तुमने देखा है, है ना? और तुम्हारे बेटे के प्राग अभाव, देह के प्राग अभाव को तुमने देखा है? देखा कि नहीं बोलो? तुम्हारे बेटे के देह का प्राग अभाव को तुमने देखा कि नहीं? नहीं देखा राजू, बोलो। हैं? तुम्हारे बेटे के, मोहनीश ने तो नहीं देखा है, राजू ने देखा होगा। नहीं देखा प्राग अभाव को? अरे भाई, शादी किया, बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो वही तो प्राग अभाव है। देह का प्राग अभाव, पहले न होना को क्या बोलेंगे? प्राग अभाव। तो तुम अपने बच्चे के प्राग, देह के प्राग अभाव को नहीं देखा? देखा। तो ये समझ में आता है, बच्चे के देह का दृष्टा मैं देह से भिन्न हूं, ये बात तो मुझे समझ में आएगी, सभी को समझ में आएगा। लेकिन मेरे ही देह का दृष्टा मैं देह से भिन्न हूं, ये बात 99 को तो समझ में नहीं आएगी। और यदि किसी को समझ में आई भी है तो अनुभव में तो आया नहीं है, परोक्ष समझ में आ गया है, शब्द से समझ में आ गया है। और हम तो ये कह दे कि तुम अपने देह के प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव को भी देखे हो, सुषुप्ति में तुम अपने देह के प्रध्वंस अभाव को देखा है कि नहीं? अब यहीं पर आकर मोहनी झगड़ा करेगा। हमारा डिस्कशन चलता रहता है तो यहीं पर खटपट हो जाएगा। अपने देह के सुषुप्ति अवस्था में, वही तो प्रसंग यहां आ रहा है घूम फिर कर, सुषुप्ति अवस्था में अपने देह के प्रध्वंसा भाव को देखा है कि नहीं? बोलो। क्योंकि अपने देह अभी है, और मैं यदि अभी सुषुप्ति में चला जाऊं गहरी निद्रा में, तो देह का क्या होगा? प्रध्वंसा भाव। सुषुप्ति अवस्था में देह का प्रध्वंसा भाव रहेगा, देह न रहना ही देह का प्रध्वंसा भाव है। स्वप्न में देह का प्राग भाव का अनुभव करते हो कि नहीं? बोलो। स्वप्न में देह का प्राग भाव, क्योंकि स्वप्न में जिस देह को तुम देख रहे हो, इस देह तो है नहीं, यह देह तो है नहीं, और स्वप्न में कोई नया देह पैदा हुआ है, नया देह की प्रतीति हुई है, वो प्राग अभाव से नया देह पैदा हुआ। स्वप्न का देह मैंने अभी देखा नहीं था जागृत में। स्वप्न में जिस शरीर को देखा है मैंने, अपने शरीर को, स्वप्न में जो अपना शरीर देखा है मैंने, वो शरीर का अभी प्राग अभाव है कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो, बेईमानी नहीं करना। आज तुम स्वप्न देखोगे, ध्यान देना, आज तुम रात को स्वप्न देखोगे तो यही शरीर को देखोगे कि स्वप्न में दूसरा ही शरीर से घूमोगे? यही शरीर से घूमोगे स्वप्न में? ये तो बिस्तर में पड़ा रहेगा, और तुम स्वप्न देख रहे हो, बाजार जा रहे हो, बाजार में खरीद कर रहे हो, वो शरीर स्वप्न देह, उस स्वप्न देह का वर्तमान अभी इस समय स्वप्न आने से पहले प्राग अभाव है कि नहीं? इसी तरह कितने शरीर हैं प्राग अभाव तुम अनुभव कर सकते हो। छाया शरीर का भी प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव है, छाया शरीर का प्राग अभाव अनुभव हो सकता है कि नहीं? अनन्याभाव का अनुभव हो सकता है छाया शरीर का प्राग अभाव? अरे भाई, छाया माने धूप में जाने से पहले उस छाया शरीर का प्राग अभाव है कि नहीं? सीधी सीधी बात है भाई। और धूप से कमरे में जाने के बाद वो छाया शरीर का प्रध्वंसा भाव है कि नहीं? है? समझ में आ रही ना बात? आज विचित्र का प्रवचन हो रहा है। इसी प्रकार से छाया शरीर का, प्रतिबिंब शरीर का प्राग भाव देखा है कि नहीं? है? मिरर के आगे खड़े होने से पहले है? प्रतिबिंब गात्र का प्राग भाव अनुभव करते हो कि नहीं? बोलो। राजू को समझ में नहीं आई बात, मैं क्या कह रहा हूं? मिरर के सामने खड़े होने से पहले मिरर में दिखाई पड़ने वाला जो शरीर है, अभी इस समय उस मिरर में दिखाई पड़ने वाले शरीर का प्राग अभाव है कि नहीं? प्रथम बात हो गई। अभी अनुभव कर रहे हो कि नहीं है? अब तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो फिर अन्योन्य अभाव का अनुभव हो जाएगा। शरीर खड़ा होगा मिरर में तो, लेकिन वो शरीर दीवार से भिन्न होगा, है ना? तो अन्योन्य अभाव होगा कि नहीं? दीवार में शरीर का अभाव, शरीर में प्रतिबिंब शरीर में दीवार का अभाव, अन्योन्य अभाव। तुम मिरर के हटते ही, मिरर से हटते ही प्रतिबिंब शरीर का प्रध्वंसा भाव का अनुभव करोगे कि नहीं? ये सारी बात दृष्टांतों से तो समझ में आ रहा है, दृष्टांत में समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दृष्टांत में समझ में आ रहा है, उसी तरह दृष्टांत में समझ में आ गया नहीं आ रहा है? स्पष्ट नहीं हो रहा है दृष्टांत में? दृष्टांत में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, दृष्टांत में क्लियर नहीं हो रहा है। अभी भी मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ये प्रैक्टिकल या अनुभव में नहीं आ रहा है। आ रहा है बोलो, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मानने के अलावा कोई, सपोज 100 रुपया तुम्हारे जेब में है, है सपोज, हाँ दृष्टांत तो दिया है इसलिए मानो। तो कल के प्रसंग तक क्या, कहां तक हमने विचार किया कल? बीस तक हो गया नहीं? देह, इंद्रियां, मन, इंद्रियां, देह और इंद्रियां, यहां तक की चर्चा हुई है ना? अजड़ात्म बदा भांति, ये 20 हो गया ना, मैं उसी को कर रहा हूं, 20 तक हुआ। तो ये बताया देह दृष्टा देह से भिन्न है, इसी तरह इंद्रिय दृष्टा इंद्रिय से भिन्न है, इसी तरह प्राण दृष्टा प्राण से भिन्न है। और क्योंकि ये दृश्य है, देह दृश्य है, इंद्रियां दृश्य हैं, प्राण भी दृश्य है, क्योंकि ये तीनों जड़ हैं। कल हमने दृष्टांत देकर बताया प्राण भी जड़ है। मैं जानने वाला हूं, प्राण जानने वाला नहीं है। संतों के कम्बल का दृष्टांत देकर हमने बताया, समझे कि नहीं? हाँ, महात्मा के शरीर में मच्छर ने काटा तो सब खून पी गया मच्छर, लेकिन शरीर को पता नहीं चला, है ना? मैं तो गहरी निद्रा में गया इसलिए पता नहीं चला, शरीर तो उसी को मच्छर काट रहा है और उसको पता न चले। परमात्मा ने क्या निश्चय किया? मच्छर खून चूसने के बाद, इसका मतलब ये जड़ है, ये जानता ही नहीं है, इसका कोई दोष नहीं बेचारा, ये जानता ही नहीं, जड़ है। कंबल चोरी हो जाने के बाद महात्मा ने क्या निश्चय किया? प्राण को, ये जड़ है, प्राण जानता नहीं है। जगे रहने पर भी कंबल किसने चोरी किया इसको पता ही नहीं चला, इसके मतलब ये जड़ है, आत्मा नहीं है। लेकिन महाराज ये तो सब चैतन्य जैसा दिखता है, तो उसका कारण बता दिया था, कल व्याख्या हुई है इस। अजड़ात्म बद आभांति, जड़ भी अजड़, अनात्मा भी आत्मवत आभांति, है ना? अजड़ आत्मवत आभांति, यत सान्निध्याद जड़ा अपि, जिसके सान्निध्य से जड़ भी अजड़वत आभांति और जिसके सान्निध्य से अनात्मा भी आत्मवत आभांति। क्या बोले? देह इंद्रिय प्राण, ये जड़ अपि आत्मवत आभांति, जड़ अपि अजड़वत आभांति, अनात्मा अपि आत्मवत आभांति। तो जिसके सान्निध्य से इनमें ये भाव आ गया है वो मैं हूं, समझे कि नहीं? जिसके सान्निध्य से इसमें ये चीज आए वो मान लो। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कह रहा हूं, जिसके सान्निध्य से जड़ प्रतिबिंब भी, जिसके कारण से जड़ प्रतिबिंब भी चैतन्य जैसा प्रतीत होने लगता है। रिफ्लेक्शन तो जड़ है, उसमें तो कोई क्रिया नहीं हो सकती ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में प्राण तो है ही नहीं। प्राण न होने के कारण उसके हाथ हिलना संभव नहीं, प्राण न होने के कारण गर्दन हिलना चलना संभव नहीं, प्राण न होने के कारण देह हिलना चलना संभव नहीं। समझे कि नहीं? प्रतिबिंब में प्राण तो नहीं ना है, लेकिन प्राण वाला बिंब के सान्निध्य में अप्राण वाला होता हुआ भी प्रतिबिंब भी प्राण वाला जैसे हाथ हिलाने लगता है। लगता है कि नहीं? अप्राण वाला होता हुआ भी प्रतिबिंब प्राण वाला की तरह शरीर हिलाने लगता है, गर्दन हिलाने लगता है, उठता है बैठता है, किसके? बिंब के चलते। तो प्रतिबिंब ये कह सकता है कि उस बिंब के चलते मुझमें सारी क्रिया आ रही है, इसका मतलब मैं असली तो बिंब हूं, प्रतिबिंब नहीं हूं। ये प्रतिबिंब निश्चय कर सकता है। एग्जाम्पल है, तुमको प्रतिबिंब बुद्धि नहीं है, अब तो हम कहेंगे बुद्धि नहीं है तो कह वो कैसे उठता बैठता है? तो बुद्धि के बुद्धि वाले की तरह व्यवहार करता है कि नहीं? बुद्धि वाला जैसा व्यवहार करता है, बुद्धि नहीं है वह भी बुद्धि वाले के तरह व्यवहार करता है कि नहीं? तुम हाथ उठाओगे तो वो भी हाथ उठाएगा, है? वो मैं हूं। ये प्राण तक की बात स्पष्ट हो गई है। हमें यह निश्चय करना पड़ेगा कि प्राण आत्मा नहीं है। प्राण आत्मा नहीं है का मतलब मैं नहीं हूं। तुम पद का शोधन हो रहा है नहीं यहां? मैं नहीं हूं, क्योंकि तुम पद का वाच्यार्थ मैं है। प्राण मैं हूं, एक शोधन हो गया तो मैं नहीं हूं। इति अवधारय, अवधारय का मतलब सपोज, मान लो, बस इतना ही, निश्चय कर। अप्रसंगगत, प्रसंगता, 21वां श्लोक, अगमन में मनो अन्यत्र सांप्रतम च स्थिरीकृतम् एवं यो व्यतिधिवृत्तिम् सोहमस्मित्यवधारय सोहमित् त्यवधारय स्वप्न जागरिते सुप्तिम् भावा भावौ धियाम् तथा यो व्यत्यविक्रियः साक्षात् सोऽहमित्यवधारय। हाँ, अब मन भी मैं नहीं हूं यह निश्चय करना है। कैसे? उदाहरण दिया, शिष्य कह रहा है गुरु से, हे गुरुदेव, आगमन में मनो अन्यत्र आप मुझे पढ़ाते रहे, मुझे सुनाते रहे, समझाते रहे, बीच में मेरा मन कहीं और चला गया। ये तुम्हारी समस्या है कि नहीं, बोलो? आप मुझे पढ़ाते रहे, मुझे समझाते रहे, हैं? बीच में मेरा मन कहीं अन्यत्र चला गया। ये इसलिए बीच में क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। सांप्रतम च स्थिरीकृतम, इस समय उस मन को मैं खींच कर लाकर बिल्कुल सजग रखा हूं, स्थिरीकृतम, भागने नहीं दिया है। इसलिए फिर कहिए महाराज आपने पहले क्या कहा था। शिष्य ये नहीं कह रहा है कि मैं चला गया था, शिष्य क्या कह रहा है, मन ही आत्मा होता तो शिष्य को ये कहना चाहिए था कि महाराज आप जिस समय प्रवचन कर रहे थे, समझा रहे थे, उस समय मैं यहां नहीं था, चला गया था। शिष्य ये कह रहा है मैं तो यहीं था लेकिन मन चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ, तुम और मन अलग अलग हैं, ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं इस दृष्टांत से ही। तुम्हारी असावधानी से मन बाहर चला जावे, अन्यत्र चला जावे, तुम्हारी सावधानी से फिर मन तुम्हारे कहे की जगह आकर बैठ जावे, तो ये तुम मन यहां बैठा है इसको भी तुम जान रहे हो, मन गया था इसको भी जान रहे हो, फिर मन यहां ठिकाने में आ गया है इसको भी जान रहे हो। इसका मतलब मन क्या हो गया, दृश्य हुआ कि नहीं, घट दृश्यवत मन भी दृश्य हो गया कि नहीं। मन यदि इस तरह दृश्य न हुआ होता तो तुम ये नहीं कह पाते कि मन गया था, मन अब आया, मन यहां बैठा है, अब बताइए। गुरु भी कहता है आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं महाराज, तू कहां चला गया था। बोले मैं तो यहीं था महाराज, तो तू यहीं था तो फिर क्यों नहीं समझा। बोले मैं तो यहीं था, मन चला गया था, मन चला गया था। आगमन में मनो अन्यत्र सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम माने इस समय, च स्थिरीकृतम, उसको मैंने स्थिर करके रखा है। पंचदशी में एक मजेदार दृष्टांत दिया है विद्यारण्य मुनि जी ने, एक शिष्य को घंटों लगाकर पढ़ाते रहे, पढ़ाने के बाद पूछा कि समझ में आई बात। बोले नहीं महाराज। बोले क्या बात है, क्यों नहीं समझ में आई। तो गुरु ने कहा कोई न कोई प्रतिबंधक है, उसी प्रतिबंधक के चलते इसको समझ में नहीं आ रही है। अब वो प्रतिबंधक क्या है पता तो लगानी चाहिए। तो तीन प्रकार के प्रतिबंधक हैं, ये बात पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने वर्णन किया है। भूतकालीन प्रतिबंधक, वर्तमानकालिक प्रतिबंधक और भविष्यकालीन प्रतिबंधक। भूतकाल में खो जाना ये भूतकालिक प्रतिबंधक, पहले जो बिता हुआ प्रसंग है भूतकालिक प्रसंग है, वहां वृत्ति का चला जाना ये भूतकालीन प्रतिबंधक है। समझे नहीं, वर्तमान में ही कहीं अन्यत्र अन्यत्र विषय करना ये वर्तमानकालिक प्रतिबंधक है। और भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना ये भविष्यकालीन प्रतिबंधक है। अब ये शिष्य को मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, कौन से प्रतिबंधक के कारण ये बात नहीं समझ पा रहा है, पता लगाना चाहिए। भाई बेटा तुम ईमानदारी से बताओ जब मैं तुम्हें समझा रहा था तुम्हारा मन कहां चला गया था। गुरु ने पूछा, विद्यारण्य मुनि जी ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया इस बात को। ईमानदारी से बताओ, जब तुम यहां बैठकर सुनने के लिए पढ़ने के लिए यहां बैठे हो और मैं तुमको पढ़ा रहा था, सुना रहा था, समझा रहा था, तो तुम्हारा मन कहां चला गया था बताओ ईमानदारी से।
क्या बताऊं महाराज,
बढ़िया एक भैंस पाल रखी थी। वो कह रहा है शिष्य, भैंस का उदाहरण दिया है विद्यारण्य मुनि जी ने, बढ़िया एक भैंस पाल रखी थी, ब्याने के बाद भैंस ब्याने के बाद क्या बढ़िया दूध, बाल्टी भर भर के दूध, जितना पीना हो पियो दूध, क्या बढ़िया भैंस का गाढ़ा गाढ़ा दूध। मैं उसको घास खिलाता था, दाना खिलाता था, उसकी सेवा करता था, और जब मैं बाल्टी लेकर जाता मेरे तरफ देखता था, वो भैंस देखती थी, जब उसके पीठ में मैं धाप मारकर जब उसके नीचे बैठता था, वो टक कर खड़े होकर बड़ी शांति से दूध देती थी, मैं बाल्टी भर दूध निकालता था और ले आता था, गरम करता था, मिश्री डालकर खूब बढ़िया, केसर डालकर, बादाम डालकर, है क्या कहना, मैं पी जाता था। लेकिन क्या बताऊं महाराज, चार दिन से वो भैंस मर गई। वो भैंस क्या हो गई, चार दिन हो गए वो भैंस मर गई। अब चार दिन हो गए, भूतकाल हुआ है कि नहीं बोलो। चार दिन पहले भैंस मरी, बार बार आप जब पढ़ाते हो मेरा मन उसी भैंस में जाता है, उसी भैंस में जा रहा है। तो आपकी बात समझ में नहीं आता। शिष्य गुरु को लगा भूतकालीन प्रतिबंधक से ये मेरी बात नहीं समझ रहा है, वो प्रतिबंधक को हटाना कैसे हटाएं। अब बेटा तुम विचार करो कि घास खाती थी और बढ़िया दूध देती थी, विचार करो वो जो भैंस मर गई, मरना माने क्या, उसके अंदर एक चेतना तत्व विद्यमान जिसको आत्मा कहते हैं, उसके रहने के चलते हरा घास खाने पर भी वह आत्मा हरे घास से सफेद दूध को रूप में परिणत कर रहा था बैठे बैठे, वही उसके शरीर को जिंदा रखा हुआ था, जीवन वही है, वही सत्वस्तु है। मरा तो उसका, तुमने जो देखा है वो तो स्थूल शरीर था, उसके अंदर जो चेतना मर गई जो बोलते हो ना, गई तो क्या गई, आत्मा गई, इसलिए शरीर से आत्मा अलग है। तो उसको लगा अच्छा देखो भूतकालिक प्रतिबंधक को ही आधार मानकर फिर उसी पर आत्मा को समझाया, चेतना को समझाया, वो बात तो वो फट से समझ जाएगा। और इधर सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है कहोगे, कुछ नहीं दिमाग में आने वाला है। ये गुरु बड़े ट्रिक जानते हैं समझाने के लिए, तो इसीलिए तो गुरु की महिमा है और कुछ नहीं। एवं यो व्यक्ति धीवृत्ति, तुम इस तरह जो तुम धीवृत्ति बुद्धि के वृत्ति से तुम मन का निश्चय कर रहे हो कि मन पहले कहीं अन्यत्र चला गया था, फिर उसको मैंने लाकर स्थिर किया है, अब आप जो कहोगे मैं समझूंगा, है ना। तो तुम इसका मतलब क्या हो, धी वृत्ति द्वारा मन दृश्य हो गया, इतनी स्पष्ट हो गया कि नहीं? इसका मतलब दृष्टा बुद्धि और दृश्य मन। सोहम मिथ्यावधारय, अब बुद्धि की बारी आई। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भावो धियाम तथा, यो व्यत्य विक्रिय साक्षात् सोहम इत्यवधारय। बेटा बुद्धि भी दृश्य है। अब आ गया ना मोहनीश, गुरुजी ने कहा कि बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि कैसे दृश्य है महाराज? स्वप्न जागरिते और सुप्ति, ये तीन अवस्था तो तुम अनुभव कर रहे हो कि नहीं? स्वप्न का भी, जागृत का भी अनुभव कर रहे हो? अवस्था का, स्वप्न अवस्था का भी अनुभव कर रहे हो, सुषुप्ति अवस्था का भी तुम अनुभव करते हो। ये तीन अवस्था में ध्याम भाव अभाव अनुभूयते। जागृत और स्वप्न में बुद्धि के भाव का अनुभव होता है। ध्यान से सुनना है, स्वप्न और जागृत ये दो अवस्था में बुद्धि के भाव का अनुभव होता है। इसका मतलब बुद्धि भावत्वेन दृश्य हो गया। स्वप्न में बुद्धि काम कर रही है कि नहीं? जागृत में बुद्धि काम कर रही है कि नहीं? इस समय तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो ना, नहीं है। हमारे महात्मा जी थे, कुछ समझ में नहीं आता तेरे को, तेरे बुद्धि तेरे खोपड़ी में गोबर भरा है। कुछ समझ में नहीं आता तेरे खोपड़ी में गोबर भरा है। इसलिए तो महाराज गोबर भरा है, इसलिए तो बाल खूब बढ़िया उगाए हैं। खाद है ना, तो और क्या। और जिसके खोपड़ी में बाल न हो उसके खोपड़ी में गोबर नहीं है, खाद नहीं है, है ना? ये मानना पड़ेगा ना। जिस जमीन में खाद खूब डाला हो तो वह फसल हरा होता है खूब। अब खोपड़ी में गोबर हो तो अपना बाल ही बढ़िया। ये हमारे बाल मेरे गोबर है ना, इसीलिए। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का अभाव है। बुद्धि कहीं भावत्ते न दृश्य है, कहीं अभावत्ते न दृश्य है। सुषुप्ति में बुद्धि अभावत्ते न दृश्य है, जागृत और स्वप्न में बुद्धि भावत्ते न दृश्य है। स्वप्न जागरिते सुप्तिम भावा भावो धियाम तथा यो व्यत्य अविक्रियः। जो अविक्रिय विकार रहित होकर जागृत स्वप्न में बुद्धि के भाव रूपता को जानता है, सुसुप्ति में बुद्धि के अभाव रूपता को जानता है, वह साक्षी है। वह साक्षी। बुद्धि के अभाव रूप को कौन जानेगा? साक्षी जानेगा। साक्षात यो व्यक्ति स साक्षी, साक्षात यो व्यक्ति स साक्षी। साक्षी कहने का अर्थ यही होता है। जागृत स्वप्न में तमाम पदार्थों को इंद्रियों के जागृत में इंद्रिय करण के रूप में जानते हैं, है ना? इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ जानते हैं। स्वप्न में अंतकरण के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं। सुसुप्ति में करण निरपेक्ष ध्यान देना। जागृत और स्वप्न में साक्षी, करण सापेक्ष जानने के कारण वो साक्षी नहीं कहलाया, हालांकि साक्षी ही है वो भी, लेकिन करण सापेक्ष साक्षी हो गया, वो साधन सापेक्ष साक्षी हो गया। सुसुप्ति अवस्था में साधन निरपेक्ष अकेले स्वयं ही जानने वाला होने के कारण सुसुप्ति में वह क्या हुआ? साक्षी हो गया। अब जागृत और स्वप्न में सामान्यतः यह कह दिया जाता है इंद्रियों से जाना गया, लेकिन इंद्रियां तो जड़ हैं, पदार्थों को तो जान नहीं सकती है। जागृत अवस्था में भी घटपट आदि को जानने वाला तो वही साक्षी है, क्योंकि वो चैतन्य है, जानना तो उसी वही जान रहा है। कौन जान रहा है? साक्षी ही जागृत में भी जान रहा है। समझे कि नहीं? जागृत के तमाम पदार्थों को साक्षी ही जान रहा है, क्योंकि साक्षी तो चैतन्य है और जानने की क्षमता चेतना में ही है। इंद्रियां तो जड़ हैं, तो इंद्रियां साक्षी नहीं हो सकती। साक्षी तो आत्मा ही होगा, लेकिन साक्षी रूप आत्मा जागृत और स्वप्न में करण सापेक्ष साक्षी है। करणों के माध्यम से जागृत में इंद्रिय के सापेक्ष साधन से और स्वप्न में अंतकरण के साधन के माध्यम से साक्षी ही जानता है, लेकिन सुसुप्ति में बुद्धि के अभाव को, मन के अभाव को, इंद्रियों के अभाव को, यानी साक्षी के अलावा और सभी चीज का अभाव वहां मौजूद है। साक्षी के अलावा सभी चीज का अभाव है कि नहीं? वहां प्राण चल रहे हैं उसको भान है? भान तो है ही नहीं। यूं तो नदी भी बह रही है, तुम सुसुप्ति में जब जाते हो दरिया में, तूफान तो फिर भी आ रहा है। लेकिन क्या सुसुप्ति में है वो दरिया? बोलो। प्राण है, इसका तुम्हें भान है? जागृत में भान है कि नहीं? स्वप्न में भान है कि नहीं? सुसुप्ति में भान है, प्राण है। भान न होने के कारण क्या सिद्ध हुआ? अभाव। उसका साक्षी कौन होगा? इसीलिए साक्षी शब्द का अर्थ साक्षात यो व्यक्ति स साक्षी। साक्षात माने साधन निरपेक्षत्वेन अकेले स्वयं ही जिसको जानता है वो साक्षी। देखिए साक्षी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे कर रहे हैं। देखो इंद्रियाणाम जड़त्वेन स्वतः प्रकाशकत्वा असंभवात्। जागृत अवस्था में सामान्यतया हम क्या कह देते हैं, पदार्थों का साक्षी कौन है? इंद्रियां। पदार्थ का दृष्टा कौन है? इंद्रियां। लेकिन इंद्रियां जड़ होने के कारण पदार्थ का दृष्टा कैसे बन सकते हैं? पदार्थ का ज्ञाता कैसे बन सकते हैं इंद्रियां जड़ होने के कारण? इसलिए स्वतः प्रकाशकत्व असंभवात् आत्मा एव खुद चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वही बाह्य इंद्रिया सापेक्षतया व्यक्ति जानाति। आत्मा एव बाह्य इंद्रिय सापेक्षतया पदार्थम व्यक्ति घटम व्यक्ति जानाति। तो साक्षी तो आत्मा ही है, लेकिन जागृत अवस्था में जिसको जानता है वो आत्मा को साक्षी नहीं कहेंगे। साक्षात नहीं जाना ना उसने, साधन प्रयोग करके जाना। अब यदि कदाचित साधन प्रयोग न करता, तो पृथक पृथक पदार्थों का बोध न करता। इसलिए पृथक पृथक पदार्थों के बोध करने के लिए उसने साधन का प्रयोग कर लिया। जिस पदार्थों को जानने के लिए जो साधन की जरूरत पड़ती है वही पदार्थ का प्रयोग उसको करना पड़ता है, इसलिए पदार्थों में डिफरेंस पदार्थ का बोध होगा। एकदम अयम घट अयम पट पदार्थ भिन्न भिन्न, एकदम ये गंधवान है, ये रसवान है, ये रूपवान है, तो साक्षी साधन के बिना सामान्य का बोध तो कर लेगा, विशेष का बोध करना पड़ेगा, करना होगा तो साधन का प्रयोग करेगा। समझे कि नहीं? सुषुप्ति में उसको कोई विशेष का बोध करना तो है ही नहीं। सुषुप्ति में विशेष का बोध करना क्यों नहीं है? क्योंकि विशेष कुछ भी नहीं है वहां। समझे कि नहीं? रूप से भिन्न रस वहां नहीं है, रस से भिन्न रूप नहीं है वहां, रूप रस से भिन्न गंध नहीं है, रूप रस गंध से भिन्न स्पर्श नहीं है, उससे भिन्न शब्द नहीं है, तो करण क्या प्रयोग करना जरूरी नहीं है? तब क्या नहीं है? नहीं है, नहीं है। अभाव को भी जानना पड़ेगा कि नहीं? खाली भाव को ही जानो और अभाव को न जानो तो ज्ञान पूर्ण होगा? है? खाली भाव को जानो अभाव को न जानो तो ज्ञान पूर्ण होगा? बोलो। हॉल में हुए हुए मनुष्यों को तो जाने, न हुआ हुआ भैंस को जानना पड़ेगा कि नहीं? हॉल में भैंस का अभाव है, जानना पड़ेगा कि नहीं? कोई पूछे कि हॉल के अंदर भैंस है कि नहीं, तो तुमको क्या कहना पड़ेगा?
नहीं है। अब ये जानकर बोल रहे हो कि बिना जाने? किसको जान रहे हो भाई? इसके अभाव को जान रहे हो कि नहीं? तभी ना ज्ञान पूर्ण होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति का साधन बनेगा तब ज्ञान। अन्यथा खाली भाव को जानोगे, अभाव को नहीं जानोगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान साधन बन ही नहीं पाएगा। इसी तरह सुसुप्त अवस्था में विशेष ज्ञान है ही नहीं, एक सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान क्या? सबका अभाव। अब सबके अभाव सामान्य ज्ञान जानने के लिए विशेष करणों की आवश्यकता ही नहीं है, वो साक्षात व्यक्ति अकेले जान लेता है। बस दो चीज पक्की है वहां, दो चीज पक्का, साक्षी चैतन्य, साक्ष्य अभाव। साक्षी चैतन्य, साक्ष्य नाम रूपों का, विशेषों का अभाव है। दृश्य का अभाव, ठीक ही कह रहे, दृश्य का अभाव भी नहीं कहेंगे, अभाव खुद दृश्य बनकर बैठ रहा है। वहां दृश्य क्या बन रहा है? नाम रूप का अभाव बोलो ना, दृश्य का अभाव तो नहीं कर सकते। वहां दृश्य क्या है? सुसुप्त अवस्था में दृश्य क्या है? ये किसका अभाव? मेरे अलावा सबका अभाव। और क्या? मेरे अलावा सबका अभाव। तो द्वैत है कि नहीं सुसुप्ति में? किसने कहा? किसने कहा अद्वैत है सुसुप्ति में? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कौन कहता है कि वहां अद्वैत है? मैं हूं और अभाव है। उस अभाव को कौन जानता है? जागृत में पदार्थ के भाव को मैं जानता हूं, तो सुसुप्ति में पदार्थ के अभाव को मैं जानता हूं। जागृत में भी पदार्थ के अभाव को जानता हूं, भाव को जानता हूं। सुसुप्ति में पदार्थ के अभाव को जानता हूं और अपने भाव को मैं खुद ही जानता हूं। पदार्थ के अभाव को भी मैं खुद जानता हूं। ध्यान दो, पदार्थ के अभाव को भी मैं खुद जानता हूं, लेकिन पदार्थ के अभाव को जानने वाला मैं खुद अपने भाव को भी, अपने होने पना को भी मैं खुद जानता हूं। मौन इस बार बार पूछता है कि किससे जाना? बुद्धि नहीं है, वृत्ति नहीं है, इसी का नाम साक्षी, साक्षात जानाति। जैसे बत्ती से, रोशनी से तमाम पदार्थ प्रकाशित होते हैं, तो पदार्थ किससे प्रकाशित हुए? तो बोले रोशनी से प्रकाशित हुए, तभी पदार्थ का ज्ञान हुआ। अब रोशनी ज्ञात हुआ कि नहीं? रोशनी किससे प्रकाशित होकर ज्ञात हुआ? कुर्सी तो रोशनी से प्रकाशित होकर ज्ञात हुआ, समझे कि नहीं? कटोरी तो रोशनी से प्रकाशित होकर ज्ञात हुआ। यदि प्रकाश से प्रकाशित न होता तो यह अज्ञात रहता। प्रकाश से प्रकाशित होने पर कटोरी ज्ञात हुई, तो प्रकाश अज्ञात है क्या? प्रकाश अज्ञात है? अब बताओ कि प्रकाश किससे प्रकाशित होकर ज्ञात हुआ? तो प्रकाश साक्षात है। कटोरी साधन सापेक्ष प्रकाश से प्रकाशित हुआ, लेकिन प्रकाश बिना साधन आपने खुद ही प्रकाशित हुआ, अन्य प्रकाश की अपेक्षा हुआ नहीं। इसीलिए जागृत स्वप्न में बुद्धि वृत्ति से पदार्थों का ज्ञान भले ही हो, सुसुप्ति में बुद्धि वृत्ति भी नहीं रहने पर भी साक्षी स्वयं ही बिना साधनों का जान लेता है। साक्षी शब्द का अर्थ यही है, ये वाक्य खूब याद करो। इंद्रियाणाम जड़त्वेन स्वतः प्रकाशकत्व असंभवात आत्मा एव बाह्य इंद्रिय अंतः इंद्रिय सापेक्ष सन, है ना, बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय के अपेक्षा रखता हुआ सापेक्ष सन जागृत अवस्थायाम पदार्थम व्यक्ति, जागृत अवस्था के पदार्थ को जानता है। स्वप्नम अंतकरण वृत्ति द्वारा सापेक्ष सन स्वप्न दृश्यम व्यक्ति पश्यति, है ना, दोनों अवस्था भाव पदार्थों के भाव अवस्था साधन सापेक्ष होकर साक्षी जानता है। सुसुप्तिम अन्य साधन निरपेक्षतया साक्षात व्यक्ति, अंतकरण साधन के अपेक्षा बिना, वैयकरण के साधन के अपेक्षा बिना ही स्वयं अकेले ही स्वयं ही जानता है साक्षात व्यक्ति। तस्मात आत्मेव साक्षी ही, तस्मात आत्मेव अवस्थात्रय अभी साक्षी। अब क्योंकि तीनों अवस्था में आत्मा ही साक्षी है, व्यक्ति जानाति, जानने का काम तो आत्मा का ही है, चाहे साधन सापेक्ष होकर जाने चाहे साधन निरपेक्ष होकर जाने। जागृत स्वप्न में पदार्थ विशेष 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 होने के कारण साधन सापेक्ष होकर जानता है, सुसुप्ति में पदार्थ विशेष विशेष न होकर सब पदार्थ एक सामान्य हो गया, कारण रूपा हो गए, कार्य रूपा नहीं हुए। क्या बोलो, सुसुप्ति में सभी पदार्थ किम रूप हो गए, कारण रूपा हो गए। कारण रूप क्या है, वहां पदार्थों का कारण रूप क्या है, अज्ञान। अब अज्ञान में कोई विशेषता तो है ही नहीं, विशेषता न होने के कारण उसको विशेष इंद्रियों की करणों की आवश्यकता नहीं पड़ी, अकेले वो जान गया। इसलिए वो साक्षी, वहां का साक्षी समझ में आता है भाई, सुसुप्त का साक्षी समझ में आता है, जागृत का साक्षी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है तो साक्षी ही, आत्मा एव साक्षी ही। इसे क्या सिद्ध हुआ, बुद्धि के भी भाव और अभाव की अवस्था सिद्ध हुआ कि नहीं, इसका मतलब बुद्धि दृश्य हुआ कि नहीं, दृष्टा कौन हो गया, साक्षी। उसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। घटाभासको दीपो घटात अन्यो यथैष्यते देहाभासको देही तथाहं बोध विग्रह। त्रिविध देह अवभासक अहम देही, समझे कि नहीं, बोलो। जागृत देह अवभासक अहम देही, स्वप्न देह अवभासक अहम देही, सुसुप्तौ कारण देह अवभासक अहम देही। सुसुप्ति में कारण देह का प्रकाशक होने के कारण मैं देही सर्वावभासक साक्षात व्यक्ति इति अहम साक्षी, देही अवभासक अवभाष्य से भिन्न हो, और क्या, देह अवभाष्य, सुसुप्ति में कारण देह अवभाष्य अवभासक अहम देही, अवभाष्यात अहम अवभासक भिन्न देहात भिन्न। ये अवधारय, मान लो, अब तुम कहोगे पहले देह को साक्षी बनाकर देह को कारण देह को खड़ा करके दिखाइए तब मैं साक्षी हूं करके मानूंगा, और कारण देह को तो खड़ा हो ही तो रहा है, चार घंटे के बाद दाल भात खाओ और सो जाओ, कारण देह तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। देखो दो चार घंटे कारण देह के तमाशा को, इसको कारण देह के तमाशा को, अज्ञान को। न किंचित अवेदिशम इति वेदिशम, क्या न किंचित अवेदिशम इति वेदिशम, कुछ नहीं जाना उसको जाना, और क्या सर्वाभाव अवभासकत्वेन आनंद लो भाई, मर गए बाप दादे, मस्ती से रहो भाई।
देहावभासको देही तथा हम बोध विग्रह,
अनुमान है, विमतो देही स्व अवभास्याद देहात विलक्षणा तब अवभासकत्वात दीपवत्। विचार का विषय, विवाद का विषय देही स्व अवभासात भिन्न, देहात भिन्न, अपने द्वारा प्रकाशित होने वाले शरीर से वह भिन्न है ना। जागृत में तुम्हारे द्वारा तुम्हारा शरीर प्रकाशित हो रहा है, स्वप्न में तुम्हारे द्वारा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रकाशित हो रहा है, सुषुप्ति में तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कारण शरीर प्रकाशित हो रहा है, तुम प्रकाशक, देह प्रकाश्य प्रकाशक, सो प्रकाश्यात भिन्ना, घट प्रकाशवत दीपवत अनुमान। आत्मा चैतन्य विग्रहो देहादि विलक्षणत्वात् घटवृद्दृष्टिवित् इति, और आत्मा चैतन्य विग्रह है, विग्रह माने स्वरूप, स्वरूप विग्रह, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम घनम, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेत केवलो निर्गुणश्च, श्वेता सूत्र उपनिषद। इसे क्या सिद्ध, आत्मा के अलावा साक्षी दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब वही आत्मा तुम्हें कई प्रकार से अवभासित होता है, सत के रूप में वर्णन किया आत्मा अवभासित होने का, बोध के रूप में प्रकाशित किया, साक्षी के रूप में किए, चित्त के रूप में वर्णन किया, अब आत्मा आनंद रूप में अवभासित होता है।
पुत्र मित्रादयो भावा यस्य शेषतया प्रियः, द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोहम इत्यवधारय।
अब ये बृहदारण्यकोपनिषद के उस श्रुति के आधार पर शंकराचार्य जी ये वाक्य बोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी प्रसंग का है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति, नवारे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। विद्यारण्य मुनि जी ने तत्व विवेक प्रकरण में बड़ा सुंदर ढंग से परम प्रेमास्पद आत्मा है, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मानभूवम विभूयासम इति प्रेमात्मनेक्षते, तो आत्मा केवल प्रेम का विषय नहीं, परम प्रेम का विषय है। दृष्टांत दिया, अन्य व्यक्ति से जो प्रीति है वो आत्मा के लिए प्रीति है, अन्य वस्तु से जो प्रीति है, आत्मा के लिए प्रीति, मैं इस माला से प्रेम करता हूं तो मैं अपने लिए इस माला से प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं अपने लिए ही तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने से ही जो खुद प्रेम करता हूं तुम्हारे लिए नहीं करता हूं। समझे कि नहीं? तुमसे प्रेम करता हूं तो आत्मा के लिए, मैं अपने लिए करता हूं, और अपने से प्रेम करता हूं तो भी अपने ही लिए करता हूं, तो परम हो गया कि नहीं? यही प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का आधार में यहां कह रहे हैं, पुत्र मित्र दयो भावा। जगत में पुत्र मित्र कलत्र गृह आदि जितने भी हैं, पुत्र मित्रादय, पुत्र मित्र वित्त बोल दो जाओ, जो कुछ भी बोलते जाओ, आदि भाव, भाव पदार्थ, यस्य शेषतया प्रिय, शेष माने दूसरे के लिए प्रिय हैं ये, और मेरे लिए वो प्रिय है। दृष्टा सर्व प्रियतमा, दृष्टा प्रिय नहीं है, मैं दृष्टा तो प्रियतम हूं। तम क्यों लगा दिया? और मैं प्रिय लगाया, मेरे में तम क्यों लगाया? क्योंकि मैं और से प्रेम करता हूं मेरे लिए, और मेरे से प्रेम करता हूं मेरे लिए, तम हो गया ना, ये हाईएस्ट। और नहीं भी हो तो चलेगा, पत्नी नहीं हो तो चलेगा कि नहीं? जिंदगी बोलो, पत्नी नहीं हो तो जिंदगी चलेगा कि नहीं? पति नहीं हो तो जीवन चलेगा कि नहीं? पैसा न हो जीवन चलेगा कि नहीं? है? घर न हो तो जीवन चलेगा कि नहीं? बोलो। लेकिन मैं नहीं हूं तो जीवन क्या चलेगा? सर्वप्रियतमा सोहम इत्यवधारय, पर प्रेमास्पदतया मान भूवम ही भू सदा अहम सदा भूया सम्मिति यो दृष्टा सोहम इत्यवधारय। आत्मा की सत्ता चित्ता आनंदता, चित्त की व्याख्या पहले ज्ञान के रूप में, ज्ञाता के रूप में, साक्षी के रूप में वर्णन कर दिया, और आनंदता की व्याख्या प्रियतमता के रूप में व्याख्या कर दी, मान भूवमी भूयासम ये सत के रूप में व्याख्या कर दी, पर प्रेमास्पदतया ये मान भूवम अहम सदा, क्योंकि मैं न पहले नहीं था ये भी नहीं, मैं अभी न रहूं भविष्य में न रहूं ये भी नहीं, मैं बना रहूं, दुनिया मरती है तो मरे है, अपने जिंदे रहना चाहिए। पंडित जी थे तो किसी आर्य समाज के बेटे की शादी में, शादी कराने के लिए चले गए। अब शादी करानी थी कहा तो बोले फाइव स्टार होटल में, अब वहां कारपेट बिछाया हुआ है, है बड़ा भारी एयर कंडीशन कारपेट बिछाया हुआ है, शादी करने वहां चले गए। अब बेटे का जो बाप था, दादा था, समझे कि ना, बेटे का दादा, वो कट्टर आर्य समाजी, उसने कहा पंडित जी आर्य समाज विधि से शादी होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ हो जाएगा, आर्य समाज विधि से ही होगा। अब आर्य समाज विधि से तो अग्नि जलाकर हवन किए बिना शादी होगी ही नहीं, सनातनियों ने तो अभी खाली मंदिर के आगे गले में माला पहनाकर भी शादी शुरू कर दिया, समझे कि नहीं? अग्नि प्रज्वलन सप्तपदी का अभी तो खत्म ही हो चुका है चलन, कहां सप्तपदी है, कहां फेरे फेरना है, अब फाइव स्टार होटल में शादी। वो कहा कि हम तो आर्य समाज ही हैं, हवन होना चाहिए, अग्नि सप्तपदी होनी चाहिए, फेरे फेरना चाहिए। आप क्या करें भाई, पंडित जी पड़ा, पंडित थोड़ा मैं जैसा ही फटाया है, बदमाश था, मैं जैसा ही है ना, तुम्हारे जैसे तो कहेंगे नहीं, तुम नाराज हो जाओगे, मैं जैसा ही था, होशियार था समझ लो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चूल्हा वो क्या करे, हवन कुंड लाए हो, चरू लाए हो, समिधा लाए हो,
कुछ भी नहीं लिया। भाई बेटा होटल में शादी कराना, तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो खाने के लिए जो टेबल में भोजन सजा के रखा था और जो प्लेटें थी, समझे कि नहीं, एक प्लेट को लाया टेबल के ऊपर रखा और जेब में दिया सलाई माचिस थी, माचिस की तीलियां, उसको प्लेट के ऊपर सजा ली। तो हवन कुंड बना लिया प्लेट को, समिधा बना ली माचिस के तीलियों को, सलाई को, कांटियों को सजा लिया वहां और दिया सलाई लगा दी उसमें, माचिस अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि प्रज्वलित हो गए, चलो स्वयंवर करने के लिए आ जाओ। बोले महाराज हवन करना तो चरू घी चरू। बोले वो खाने के लिए घी रखा था, दाल भात सब डाला उसमें, घी डाला, मुंह पक कर लिया। बोले पढ़ो ओम भूर्भुव, आर्य समाज में गायत्री पढ़ दिया हो गया काम। ओम भूर्भुव स्वाथ सवितुर्वरेण्यम मंत्र पढ़ा, स्वाहा, चलो इसमें आ गए। तब तक दिया सलाई खत्म हो गए, फिर दूसरा डाल दिया फटाफट। फिर तीन दिया सलाई में शादी हो गई आर्य समाज विधि से, फाइव स्टार होटल में। बोले जला दी और लो सात बार दौड़ के घूम जाओ इसको। दोनों वर वधु को घुमा लिया, हो गया बाबूजी आर्य समाज की विधि से शादी हो गया। तो हमने कहा ये पंडित इस तरह शादी कराकर कहीं शादी ठीक होगा? बोले महाराज वर मरे वधु मरे, हमारा तो जेब भरे, हमने शादी करा दी नहीं है। वो बर बाचे मरे, बहू मरे बचे, हमको क्या लेने देना है? हमको उसने 5,000 रूपया दक्षिणा दी, आज से 20 साल पहले की घटना है। 5,000 रूपया दक्षिणा दी बस, उसके बाद अब बर मरे चाहे बधू मरे, हमारा जेब तो भर गया ना। तो यही तो बात है, यहां अपने रहना चाहिए, बाकी मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं है। मैं रहूं, मेरा अभाव कभी नहीं होना चाहिए। सद्रूप में स्वयं अभिव्यक्ति होती है। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।